नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने और मेडिकल बीमा के प्रीमियम को नई टैक्स रिजीम में आयकर कानून के 80D और 80C में शामिल करने की मांग की है, ताकि टैक्स से लोगों को राहत मिले। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में मेडिकल बीमा पर 18% की जीएसटी को जन विरोधी बताया है और कहा है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी की जाएगी। मेडिकल बीमा और जीवन बीमा पर 18% की जीएसटी अब राजनीतिक मुद्दे का रूप लेती जा रही है। गडकरी ने जब लिखा तो लोग बताने लग गए कि बजट पेश होने के बाद सरकार के भीतर से किसी भी मंत्री की तरफ से ये पहली आवाज उठी है। लोग तो इसके राजनीतिक मतलब भी निकालने लग गए कि 240 सीटें आने पर बीजेपी के भीतर बगावत हो रही है, लेकिन वो केवल एक रूटीन पत्र साबित हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा है। पत्र लिखकर नितिन गडकरी ने कुछ भी खास नहीं किया। रूटीन प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र के बीमा संगठन की बात को वित्त मंत्री की तरफ बढ़ा दिया, हेडलाइन में छा गए, उसके बाद गायब हो गए। इससे इतना तो जरूर हुआ कि यह मुद्दा तहखाने से बाहर आ गया। आम आदमी, खासकर वरिष्ठ नागरिक, इस प्रीमियम से काफी परेशान है। 18% की जीएसटी के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की दरें दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वरिष्ठ नागरिकों को 1,00,000 तक के स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए औसतन 12,000 से 15,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसी साल जनवरी में कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री से चिट्ठी लिखकर मांग की कि स्वास्थ्य बीमा अधिक लोग खरीद पाएं, समाज में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े, इसलिए प्रीमियम के ऊपर 18% की जीएसटी घटा दीजिए, 5% तक ले आइए। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम लगभग 2 गुना हो गया है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। पॉलिसी रिन्यूअल भी औसतन 65-70% तक ही है, जिससे पता चल रहा है कि सामान्य बीमा धारक लगातार बढ़ोतरी के चलते प्रीमियम नहीं चुका पा रहा है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने प्रीमियम का मुद्दा उठाया।
She like many other professionals living in our cities in India, she has to pay medical insurance premium every year. So what kind of a travesty is it that this government charges 18% GST on insurance payments? That for getting the basic right of healthcare that you pay premium for, you're charging 18% GST on that.
लेकिन खबर चल गई कि गडकरी ने पत्र लिखा है। लगता है कि इस खबर में बीमा धारकों को जीएसटी से होने वाली परेशानी की कम चिंता थी। गडकरी के लिखने में सियासी मसाला ज्यादा दिख गया। गडकरी ने भी पत्र लिखने के बाद कुछ किया तो नहीं, बस चिट्ठी आगे बढ़ा दी और हेडलाइन में छा गए। इस प्रक्रिया को भी दर्शकों को समझना चाहिए। विपक्ष के सांसद सदन में और बाहर इसकी मांग कर रहे हैं कि आपने साकेत गोखले के बयान को उसी प्रमुखता से छपा हुआ देखा जिस प्रमुखता से गडकरी के पत्र के बारे में देखा था। आपकी कमाई तो बढ़ती नहीं, लेकिन टैक्स कब कहां से आपके गुब्बारे को खींचकर नीचे ले आता है पता नहीं चलता। जीएसटी को लेकर छपने वाली खबरों को देखिए। आयकर के अलावा इस टैक्स ने भी मिडिल क्लास से लेकर गरीबों की जेब में छेद कर दिया है। जनवरी 2023 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 50% जो सबसे गरीब लोग हैं वो 2/3 जीएसटी भर रहे हैं। कुल जीएसटी का 64% गरीब तबके से आता है और भारत के 10% अमीरों से केवल 3-4% जीएसटी आती है। मिडिल क्लास का हिस्सा 40% है, जबकि हाल ही में सरकार ने दावा किया कि जीएसटी से गरीबों को फायदा हो रहा है। घरेलू चीजें सस्ती हुई हैं, उनकी बचत बढ़ी है, मगर आंकड़े तो यही कहते हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा बचत में कमी आई है। यह बताने का मकसद है कि जीएसटी कब कहां से आपकी जेब में छेद करती है आपको पता चलना चाहिए। ऊपर से आयकर तो भर भर कर दे ही रहे हैं उन पुलों को बनाने के लिए जो पहली ही बारिश में बह जाते हैं और संसद की इमारत चूने लग जाती है। लोगों की हालत यह है कि बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि 18% की जीएसटी से प्रीमियम महंगा होता जा रहा है। जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स लगता था, पहले 5% था, फिर इसे घटाकर 3% किया गया। लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने इस सर्विस टैक्स को 14% कर दिया और 2017 में जीएसटी आई तो 18% कर दिया। जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा उस वक्त। इतने साल गुजर जाने के बाद पब्लिक को अब याद आया है कि इसका विरोध करना है, बोलना है। मनोज सिन्हा जब रेल राज्य मंत्री थे, या उस समय की खबरों की कतरन है, रेल राज्य मंत्री जीवन बीमा के अधिकारियों के संगठन के कार्यक्रम में कह रहे हैं वे वित्त मंत्री से जीएसटी का मुद्दा उठाएंगे। मनोज सिन्हा इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों का एक संगठन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया। यह संगठन 2017 से ही 18% जीएसटी का विरोध कर रहा है। तब से लेकर अब तक सभी वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को इस बारे में ज्ञापन दे चुका है कि 18% जीएसटी कम की जाए। इस संगठन के नेता दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिल चुके हैं और मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी। इस खबर को आप एक लाइन में भी समझ सकते थे कि गडकरी और ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर जीएसटी का विरोध किया, लेकिन एक लाइन की खबर से आप कुछ भी नहीं जान पाते, पता नहीं चल पाता कि इसे लेकर कितने लंबे समय से मांग की जा रही है और लोगों के बीच क्या असर हो रहा है। जैसे इस बार भी वित्त मंत्री को लिखने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, वैसे इस तरह की मांगों और मुलाकातों के बाद भी कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन जो लोग मेडिकल और जीवन बीमा पर 18% प्रीमियम दे रहे हैं, उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रही है। हमारे एक मित्र 3 साल पहले 23,000 प्रीमियम दे रहे थे, अब 31,000 देते हैं। 3 साल में 8,000 अधिक हो चुका है। आज भी भारत की 73% आबादी के पास बीमा नहीं है। अगर बीमा इस तरह से महंगा होता जाएगा तो आम आदमी अपने जीवन की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लंबा वीडियो देखने के फायदे बता रहा हूं, इसलिए विस्तार से और समग्रता से और आखिर तक देखा कीजिए। मिंट अखबार में सुमित बोहरा की रिपोर्ट है, इसी साल 27 जून को छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगाई की दर 14% है, जो बहुत अधिक है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने या कम करने से लोगों को राहत मिल सकती है, लोग फिर से बीमा को रिन्यूअल कराने लग जाएंगे। इस महंगाई के कारण बीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ ही लोग एक से अधिक बीमा खरीद रहे हैं और 73% आबादी के पास बीमा नहीं। वित्त वर्ष 2024 में भारत में स्वास्थ्य बीमा का सालाना प्रीमियम 1 ट्रिलियन रुपए को पार कर गया। भारत में यह 20.2% की दर से बढ़ रहा है। G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ता बीमा बाजार है भारत का। इसके बाद भी 73% आबादी बीमा की पहुंच से दूर है। प्राइवेट बीमा कंपनियों ने भी 18% जीएसटी का विरोध किया है, जीएसटी कम करने की मांग की है। तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी। उन्हें भी दिख रहा है कि जो क्लास थोड़े अधिक प्रीमियम पर उनका बीमा खरीद सकता है, वह भी 18% जीएसटी के कारण खिंचा खिंचा महसूस करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अक्सर इसे जीएसटी काउंसिल पर थोप देती हैं। अप्रैल 2022 में वित्त मंत्री ने इसे लेकर एक लिखित जवाब दिया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर के अनुसार वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी दर को कम करने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद के सामने रखा गया, लेकिन परिषद ने इसकी सिफारिश नहीं की। 22 दिसंबर 2018 को परिषद की 31वीं बैठक में और 20 सितंबर 2019 को परिषद की 37वीं बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव रखे गए, लेकिन परिषद ने जीएसटी कम करने की सिफारिश नहीं की। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों और भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा नीति, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सभी को जीएसटी में पूरी छूट दी गई है। इन पर कोई जीएसटी नहीं लगती। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को भी जीएसटी से छूट मिली हुई है। लेकिन यह इस सवाल का जवाब नहीं हुआ कि आयुष्मान से लेकर निरामया और जन आरोग्य बीमा गिना दीजिए कि इस पर जीएसटी नहीं है। सवाल उन लोगों का है जो बाजार से बीमा खरीदते हैं और प्रीमियम पर 18% जीएसटी देने के लिए बाध्य हैं। उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है। इस तरह का टालू जवाब 2021 में वित्त राज्य मंत्री भरत कराड़ ने दिया कि सरकार आयुष्मान योजना के तहत बीमा सुविधा दे रही है, क्या आयुष्मान सभी के लिए है? सालाना 5 लाख रुपए के इस स्कीम में पूरे परिवार के बीमा से क्या स्वास्थ्य बीमा की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? नहीं हो सकती हैं। डाउन टू अर्थ की 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी बीमा से मिले पैसे के अलावा उसके बाहर मरीज द्वारा किया जाने वाला खर्च काफी अधिक है। कुल खर्च का करीब 48% तक है। यही खर्च मरीजों को वापस गरीबी में ढकेल देता है। भारतीय जीवन बीमा से लेकर निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट पर 18% GST लगाने से प्रीमियम महंगा हो गया और यह लोगों को चुभ रहा है। इसी साल 6 फरवरी की यह खबर हिंदू बिजनेस लाइन की। वित्त मामलों की स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाली GST में कमी की सिफारिश की। भाजपा के जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पर लगने वाली GST दरों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। अभी 18% पर हैं। इसकी अधिक दरों के चलते प्रीमियम महंगा होता है और ये वजह बनता है कि लोग पॉलिसी नहीं खरीदते हैं। समिति ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटेल पॉलिसी और माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी और टर्म पॉलिसी में GST की दरें कम की जा सकती हैं। समिति ने यह भी कहा कि PSU इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सरकार की बीमा योजनाओं में भागीदारी जरूरी होती है और ये उनके लाभ को प्रभावित करता है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हासिल करने के लिए जरूरी है कि ऐसे नियम बराबरी से क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों पर लागू होने चाहिए। भारतीय जीवन बीमा भी जमकर GST का भुगतान करती है सरकार को और यह GST आपके जेब से जाती है। LIC की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को देखिए तो निगम सालाना 2000 करोड़ से अधिक की रकम GST में चुका रहा है। बीमा पॉलिसी में 10,000 का प्रीमियम है तो उसमें करीब 1,000 GST है। बीमा का संबंध सामाजिक सुरक्षा से है, जीवन की अनिश्चितता से है। इस पर GST कैसे लग सकती है? तब तो हवा पर भी लगा दीजिए। एक एजेंट ने हमें बताया कि अगर आप 30 साल के लिए 25 लाख का टर्म बीमा लेते हैं तो अनुमानित रूप से प्रीमियम 8,257, 18% GST जोड़ दीजिए तो यह बढ़कर 9,765 रुपए हो जाएगा। इस तरह से 30 साल में आप सरकार को 44,000 GST देते हैं केवल एक प्रीमियम पर। अगर GST नहीं होती तो हो सकता था कि आप 25 लाख की जगह 35 लाख का टर्म बीमा ले सकते थे। तो GST की वजह से लोग कम का बीमा कवर ले रहे हैं। यह सब अनुमानित राशि है। इससे सरकार को कमाई तो हो रही है लेकिन सबको सामाजिक सुरक्षा देने का मकसद पूरा नहीं हो रहा है और जो लोग खरीद रहे हैं टर्म इंश्योरेंस वो भी कम सुरक्षा का कवर ले रहे हैं। जो खरीद सकता है उससे तरह तरह से आप वसूले जा रहे हैं। इससे साफ है कि बीमा धारक परेशान है। केवल वरिष्ठ नागरिक ही नहीं, नौजवान भी, उनके लिए तो EMI भी महंगी है, प्रीमियम महंगा है, टैक्स तो जमा कर ही रहे हैं। गनीमत है कि राष्ट्रवाद और धर्म की आंधी राजनीति में चल रही है, वरना इस मिडिल क्लास का टाइम ही नहीं कटता और हर समय इसका दुख दिखता रहता। धर्म की राजनीति ने अंकिलों को उलझाए रखा। अभी जरा भूत उतरा है तो यह सब दिख रहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्स की मार पड़ रही है, लेकिन यह मार तो पिछले 10 साल से पड़ रही है। कहां गई वो खुशी कि हम 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे मगर कुछ नहीं कहेंगे? अगर टैक्स से दर्द बढ़ गया तो मेरी एक राय है, मिडिल क्लास को सरकार से मांग करनी चाहिए कि GST खूब बढ़ाइए, 36% कीजिए, मगर हमें धार्मिक मुद्दे दीजिए, नफरत के मुद्दों की सप्लाई कीजिए ताकि हमारा नशा जो उतरा है फिर से चढ़ने लग जाए। यही नहीं, सरकारी बैंकों ने 3 साल में मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण आप जनता की जेब से 5,000 करोड़ रुपए काट लिए। सरकार रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट बंद कर पैसे कमा रही है। 2022-23 में एक साल में ही 2,242 करोड़ सरकार ने कमाए हैं। यहां तक कि वेटिंग लिस्ट का टिकट कैंसिल कराने पर आपको घाटा होता है मगर सरकार की कमाई हो जाती है। इससे ही 3 साल में 1200 करोड़ से अधिक का फायदा हुआ है सरकार को। तो जब तक राजनीति में आप धर्म के मुद्दे को लाते रहेंगे, नफरत की राजनीति में अपने आप को झोंके रहेंगे, तब तक आपकी जेब से कितना भी पैसा कट जाए मैं गारंटी देता हूं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ही नहीं बचेगी तो पता कैसे चलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।